الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین پروگرام ہماری دنیا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مزید چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے بچوں لائف میں آپ نے میٹھا تو بہت کھایا پیا ہوگا کبھی مٹھائی کی صورت میں تو کبھی شربت کی صورت میں کبھی ڈیزرٹ یعنی سویٹ ڈش کی صورت میں تو کبھی چاکلیٹ ٹافیز اور آئس کریم کی صورت میں لیکن ایک میٹھی چیز اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے جس کی مٹھاس کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور یہ مثالی مٹھاس والی چیز جنتیوں کو جنت میں بھی ملے گی جی ہاں اور اس کا نام ہے شہد جسے انگلش میں ہنی اور عربی میں عسل کہتے ہیں بچوں شہد اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا ہماری دنیا میں کوئی ثانی یعنی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ ہمیں بے مثال ذائقہ بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے اللہ پاک کی یہ لاجواب نعمت ہمیں کس طرح حاصل ہوتی ہے کیا فائدے ہمیں دیتی ہے اور کیا خصوصیات اور کمالات اپنے اندر رکھتی ہے آئیے سنتے ہیں اپنے اس پیکج میں یہ دنیا شہد شہد کی مکھیوں اور کچھ دوسرے کیڑوں سے تیار کی جانے والی ایک میٹھی چپکنے والی لیزدار غذا ہے شہد کی مکھیاں پودوں کے خوشبودار رس سے شہد پیدا کرتی ہیں شہد کی مکھیاں شہد کو موم کے سانچوں میں اسٹور کرتی ہیں جسے ہنی کومز یعنی شہد کا چھتہ کہتے ہیں شہد کی مختلف اقسام دنیا بھر میں مشہور ہیں شہد کے استعمال اور پیداوار کی ایک لمبی ہسٹری ہے مختلف تاریخی باقیات سے پتہ لگتا ہے کہ 8000 سال پہلے بھی شہد انسانوں کے استعمال میں تھا شہد جنگلی مکھیوں کی کالونیوں سے یا فارمنگ کے ذریعے رکھی جانے والی مکھیوں کے چھتے سے جمع کیا جاتا ہے جنگلی چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں ایک رانی مکھی یعنی کوئین بی پھر کچھ ہوتی ہیں ڈرون بیز اور پھر ایک ہوتی ہیں ورکر بیز جو 20,000 سے 40,000 کی تعداد میں ہوتی ہیں ورکر بی چھتے سے نکل کر پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور اسے اپنے ہنی اسٹمک میں رکھتی ہے یہ ہنی اسٹمک فوڈ اسٹمک کے علاوہ ایک اور اسٹمک ہوتا ہے جو کہ فوڈ اسٹمک کے اوپر کی طرف ہوتا ہے یہ ہنی اسٹمک تقریباً 40 ملی گرام رس اپنے اندر رکھ سکتا ہے یعنی کم و بیش مکھی اپنے وزن کا 50% اور اس کو بھرنے میں 1000 سے زیادہ پھول اور 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے رس جمع کر کے ورکر بی چھتے میں واپس آتی ہے اور کہہ کر کے وہ رس چھتے میں موجود مکھیوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے پھر یہ مکھیاں ہنی اسٹمک استعمال کرتے ہوئے اس رس کو ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ رس مختلف صورتیں اختیار کرتے ہوئے چھتوں کے خانوں تک پہنچ جاتا ہے اللہ پاک نے شہد کی مکھی میں بڑی زبردست صلاحیت رکھی ہے وہ یہ کہ شہد کی مکھی اپنی باڈی سے ہیٹ کی بڑی مقدار پیدا کر سکتی ہے اور اپنی اسی صلاحیت کی مدد سے وہ شہد کے چھتے کا ٹیمپریچر ایک مخصوص مقدار پر رکھتی ہے یعنی تقریباً 35 ڈگری سیلسیس پر اور اسی طرح یہ پروسیس جاری رہتا ہے حتیٰ کہ اس رس میں سے پانی ختم ہو کر صرف شہد رہ جاتا ہے اور پھر یہ فائنلی مکھیاں چھتوں کے خانوں کو ویکس یعنی موم سے بند کر دیتی ہیں ناظرین شہد کی مکھیوں کی جنگلات میں بڑی بڑی کالونیز ہوتی ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ بھی کی جا رہی ہے یعنی مکھیوں کی آرٹیفیشل کالونیز بنائی جاتی ہیں اور ان کے آرٹیفیشل ہائیوز یعنی مصنوعی چھتے لگائے جاتے ہیں ایوریج طور پر ایک شہد کا چھتہ تقریباً साल में 29 केजी शहद पैदा करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया भर की शहद की पैदावार 1.9 मिलियन रिकॉर्ड की गई। शहद को छत्ते से निकालने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिनमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से कवर किया जाता है ताकि मक्खियां किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके बाद आग या धुएं की मदद से मक्खियों को छत्ते से दूर किया जाता है और फिर किसी भी टूल की मदद से छत्ते को उतार लिया जाता है। इसके बाद फिर इस छत्ते को काट कर या निचोड़ कर शहद को छत्ते से अलग कर लिया जाता है। फिर शहद की सफाई के लिए इसे मजीद फिल्टर किया जाता है और इस तरह हम ये शहद इस्तेमाल में लाते हैं। शहद के इस्तेमाल पर नजर की जाए तो मुख्तलिफ तरीकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। खानों में इस्तेमाल होता है, मशरूबात में इस्तेमाल होता है और सिर्फ रोटी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद उन चंद फूड्स में से है जो कभी खराब या सड़ता नहीं है। जी हाँ, अगर शहद को एयर टाइट बॉटल में रखा जाए तो ये कभी भी खराब नहीं होता। शहद को कई बीमारियों वगैरह में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और आज भी शहद डैंड्रफ, मैदे का अल्सर, हत्ता के एलर्जीज के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत से घरेलू नुस्खों में भी शहद का एक अहम किरदार है। एक तहकीक के मुताबिक 2 चाय के चम्मच शहद पुरानी खांसी को ठीक कर सकता है और हलक में आराम पहुंचाता है और ऐसे बैक्टीरिया को मार देता है जो इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। अगर किसी को नींद ना आती हो तो 1 से 2 चम्मच शहद गर्म दूध में डालकर पी लिया जाए तो काफी आराम आ जाता है। अगर जख्म कटे या जले पर लगाया जाए तो उस जगह को इन्फेक्शन से बचाता है, सूजन दर्द वगैरह को कम करता है और मुतासिरा जगह को जल्द ठीक करता है। शहद डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वजन कम करने में भी मदद देता है। शहद कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता और दिल की बीमारियों से बचाता है। स्किन और बालों के लिए शहद बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करता है। कोनियों और फटे हुए होंठों की स्किन को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद के मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं और ये फ्लेवर्स और कलर्स मुख्तलिफ जगहों से रस जमा किए जाने की वजह से हैं। इन कलर्स में रेड, एम्बर, येलो और ब्राउन कलर्स शामिल हैं। नाजरीन, शहद में मिलावट बहुत आम है और कई मर्तबा हम धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। माहिरीन ने खालिस शहद की पहचान के कुछ तरीके बताए हैं जो ये हैं। नंबर 1, थंब टेस्ट। अपने अंगूठे पर थोड़ा सा शहद रखें और चेक करें कि आया किसी दूसरे लिक्विड की तरह फैलता है या नहीं। अगर फैल जाता है तो हो सकता है ये खालिस ना हो। नंबर 2, वाटर टेस्ट। एक चाय का चम्मच शहद लें और पानी से भरे हुए गिलास में डालें। जाली या मिलावट शुदा शहद पानी में घुल जाएगा, जबकि खालिस शहद जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है गिलास की तह पर गांठों की तरह बैठ जाएगा। नंबर 3, फ्लेम टेस्ट। खुश्क कॉटन या टिश्यू पेपर लें और इसे शहद में डिप करें, फिर उस शहद वाली कॉटन या टिश्यू पेपर को जलाएं। अगर ये जलना शुरू हो जाए तो आपका शहद खालिस है, अगर नहीं जलता तो इसमें मिलावट हो सकती है। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह नहल में अल्लाह पाक ने शहद का जिक्र फरमाया है, चुनाचे इरशाद हुआ, तर्जमा, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नर्म और आसान है। इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। नाजरीन और बच्चों, इन आयात का खुलासा यह है कि अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि बास पहाड़ों, दरख्तों और छतों में घर बनाए, फिर मीठे, कड़वे, फीके हर किस्म के फलों और फूलों में से खाए और इनकी तलाश में अपने रब के बनाए हुए नरम और आसान रास्तों पर चलती रहे जिनका अल्लाह पाक के फजल से इसे इल्हाम किया गया, हत्ता कि इसे उन रास्तों पर भी चलना दुश्वार नहीं और वो कितनी ही दूर निकल जाए रास्ता नहीं भटकती और अपने मकाम पर वापस आ जाती है। इसके पेट में एक पीने की चीज यानी शहद सफेद, जर्द और सुर्ख रंगों में निकलता है। इनमें लोगों के लिए शिफा है और ये नाफे तरीन दवाओं में से है और बहुत सारे माजूनों में ये शामिल भी किया जाता है यानी मिक्स किया जाता है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की कुदरत और हिकमत पर निशानी है कि इसने एक कमजोर और नातवां मक्खी को ऐसी दानाई अता फरमाई और ऐसी पेचीदा सनाते मरहमत की और अपनी जात व सिफात में शरीक से भी पाक है इससे गौर फिक्र करने वालों को इस पर भी तंबीह हो जाती है कि वो अपने कुदरत कामिला से एक अदना ज़ईफ़ सी मक्खी को ये सिफ्त अता फरमाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों और फलों से मुलायम अज्जा हासिल करे जिनसे नफीस शहद बने जो नहायत खुशबूदार हो, ताहिर व पाकीज़ा हो, फासिद होने और सड़ने की इसमें काबिलियत ना हो, तो जो कादिर हकीम एक मक्खी को इस शहद के मादे जमा करने की कुदरत देता है, वो अगर मरे हुए इंसान के मुंतशिर अज्जा को जमा कर दे तो उसकी कुदरत से क्या बाईद है। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाया करते थे। हदीस पाक में है कि जो कोई हर माह 3 सुबह शहद खाए वो किसी बला में मुबतला नहीं होगा। सुभान अल्लाह, इस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी शहद के इस्तेमाल का हुक्म फरमाया है। इन शॉर्ट, शहद अल्लाह पाक की वो अजीम नेमत है जिसमें जायका भी है और फ़ायदा भी, गिजा भी है और शिफा भी, सेहत भी है, इलाज भी, मज़ा भी है, दवा भी, कमाई भी है और तवानाई भी। तो इस पाकीज़ा नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होइए और अपने रब का खूब शुक्र अदा कीजिए। नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का होता है वक्त ख़त्म। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई कमेंट देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ये दुनिया नई सूरज नई चंदा ये तारा चलो नाम सीखे के क्या ये सारा। ये दुनिया नई सूरज नई चंदा ये तारा चलो नाम सीखे के क्या ये सारा।